का कर्ता बने नहीं, कहे ते आप तो अपना कर्ता बने नहीं। अपना कर्ता आप मनोगे तो किनू की हो गया, किड़ा दोष आएगा? आत्मा आश्रय दोष। मैनू कैसे ज्ञान हो गया? अपने आप होया। किड़ा दोष हो गया? आत्मा आश्रय। मैं कैसे पैदा होया? अपने आप। इनू कहिंदे आत्मा आश्रय दोष। ठीक है ना। मेरा कर्ता कौन है? मैं अपना आप ही करता हूँ। तो किड़ा दोष हो गया? आत्मा आश्रय दोष। अपना आप करता नहीं हो सकता। जो ईश्वर करता बने नहीं, कहे थे आप से तो अपना कर्ता बने नहीं। जो अपना कर्ता आप ही अंगीकार करें तो आत्मा आश्रय दोष होवेगा। आप ही क्रिया का कर्ता आश्रय और आप ही क्रिया का कर्म, क्रिया का विषय रूप कार्य होवे तहां आत्मा आश्रय होवे है। जैसे कुलाल क्रिया का कर्ता है और घट कर्म है, तैसे क्रिया का कर्ता और कर्म भिन्न होवे हैं, एक बने नहीं, जानते आत्मा आश्रय दोष है। कर्म नाम कार्य का है और कार्य के विरोधी का नाम दोष है। आत्मा आश्रय कार्य का विरोधी है, जानते दोष है। ईश्वर का कर्ता अन्य अंगीकार करना होवेगा, सो अन्य भी प्रथम कर्ता की न्यायी का कर्ता जन ही कहना होवेगा। सो तां का कर्ता भी प्रथम की न्यायी तां से भिन्न ही कहना होवेगा। सो प्रथम जो ईश्वर है तांकू द्वितीय कर्ता का कर्ता अंगीकार और अन्य आश्रय दोष होवेगा। वो कह रहे ऐसे समझ लो, वो कह रहा भी जो तुसी ईश्वर का कर्ता मनोगे तो अपने आप तो अपना कर्ता हो नहीं सकता। ईश्वर कोई भी अपने आप तो अपना कर्ता हो नहीं सकता। तो जे उन्हों कर्ता मनोगे भी यदा कोई दूसरा ईश्वर कर्ता है, ये बनाया, ये बनाया, तो केड़ा हो गया? अन्य आश्रय दोष, एक दूसरे के आश्रय दोष हो गया। तो ये तुम मैं ऐसे डिटेल से समझा देना। पहला केड़ा हो गया? आत्माश्रय दोष, अपने आप करता है, अपने आप आत्माश्रय दोष हो गया। जे दो ईश्वर हैं तो उन्हें इनू बनाया, इन्हें उन्हू बनाया, तो यह केड़ा हो गया? अन्योन्य आश्रय दोष। एक हों चक्रिका दोष, ये ईश्वर है, ये ईश्वर इस तो पैदा होया, ये ईश्वर इस तो पैदा होया, ये ईश्वर इस तो पैदा होया, ईश्वर फिर पहले तो, वो चक्रिका दोष हो गया। हूँ कहें चक्रिका दोष। ठीक है, तीन हो गए। एक हों अनावस्था दोष, अनावस्था दोष मैंने ये ईश्वर का कर्ता, दूसरा ईश्वर दूसरे ईश्वर का कर्ता, तीसरा तीसरे का, चौथा चौथे का, पंजवा पंजवे का, छेवा अनावस्था, कहीं जाके टिकाऊ ही नहीं। उन्हें कहें अनावस्था दोष। ठीक है, सारे दोष जिदे हो करता नहीं हो सकता, दोष से रहित जो हो वह करता होगा। ठीक है, इतना समझो। तृतीय कर्ता जो अंगीकार करना होगा, तो तृतीय कर्ता जो द्वितीय माने तब तो अन्य आश्रय दोष होवे, तो प्रथम माने तब चक्रिका दोष होवे। चक्रिका दोष का पता चल गया ना, वो अन्य आश्रय का भी पता लग गया, एक दूसरे के आश्रय। जैसे चक्कर का भ्रमण होवे, तैसे प्रथम कर्ता द्वितीय जन और द्वितीय कर्ता तृतीय जन और तृतीय कर्ता प्रथमा जन, ये चक्कर हो गया। सो प्रथम फिर द्वितीय जन, इस रीति से कार्य कारण भाव का भ्रमण होवेगा। चक्र का स्थान में कोई भी सिद्ध होवे नहीं, सर्व की परस्पर अपेक्षा है। अन्योन्य आश्रय दोष में दोषी दो की परस्पर अपेक्षा है, एक की सिद्धि हुए बिना अन्य की सिद्धि हुए नहीं। जैसे कुलाल का कर्ता आप नहीं किंतु तां का पिता है, कुलाल का कर्ता कुम्हार का कर्ता कौन होगा? उदा पिता। ठीक है, तैसे प्रथम ईश्वर का कर्ता का अन्य कर्ता है और कुलाल का पिता अपने पुत्र से उत्पन्न हुए नहीं। कुलाल का पिता पुत्र से उत्पन्न हो जाएगा, वो तो अपने पिता से होगा। ठीक है ना, किंतु अन्य पिता से उत्पन्न होवे है, तैसे द्वितीय कर्ता प्रथम कर्ता से उत्पन्न होवे नहीं किंतु अन्य कर्ता से ही कहना होवेगा। और कुलाल का पिता कुलाल और तां के पिता से उत्पन्न होवे नहीं किंतु चतुर्थ जो कुलाल का पितामह तां से उत्पन्न होवे है। तैसे तृतीय कर्ता भी प्रथम और द्वितीय कर्ता से उत्पन्न होवे नहीं, जानते चतुर्थ कर्ता और अंगीकार करना होवेगा। तां चतुर्थ कर्ता और पंचम मानना होवेगा, उदा पंचमा मनु, जानते अनावस्था दोष होवेगा। पांच छे सात जितों तक मर्जी चलते जाओ किनू मनोगे करता। जे तुसी सौ मान लिया, ਤੇ 100 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 100ਵੇਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 99 ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ 100 ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ 99 ਬੇਕਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅਨਵਸਥਾ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ ਕਾ ਨਾਮ ਅਨਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਤ ਕੀ ਧਾਰਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੋ ਕੌਣ ਸਾ ਕਰਤਾ ਜਗਤ ਕਰੇ ਹੈ, ਜਿਹ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ 100 ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਸੀ ਏਕੂ ਜਗਤ ਕਾ ਕਰਤਾ ਮਾਨਣੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਯੁਕਤੀ ਕੇ ਅਭਾਵ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਨਗਨਮ ਵਿਰਾਹ, ਵਿਨਗਮਨ ਵਿਹਰਾ ਕਹੇ ਹੈ, ਵਿਨਗਮਨ ਵਿਹਰਾ ਕਰਤੇ ਕਾ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਕੀ ਕਹੂੰ ਵਿਰਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੋ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਮੇਂ ਧਾਰਾ ਕਾ ਅੰਤ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ, ਸੋਈ ਕਰਤਾ ਜਗਤ ਕਾ ਮਾਨਣਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਵੇਗੇ। ਜੇ 100 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਮ ਪਰਾਗ ਲੋਪ ਹੈ, ਪੀਛੇ ਕੇ ਅਭਾਵ ਕਾ ਨਾਮ ਪਰਾਗ ਲੋਪ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਸੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੰਤ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੋ ਉਤਪੱਤੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਉਤਪੱਤੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੋ ਆਤਮ ਆਸਰੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਾਹੀ ਤੇ ਨਿੱਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਔਰ ਜੀਵ ਕਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਸਵਰੂਪ ਸੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਾ ਔਰ ਜੀਵ ਕਾ ਆਂਦਾ ਸਰੂਪ ਸੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪਾਧੀ ਸੇ ਭੇਦ ਹੈ। ਵੀ ਛੋਟੀ ਲਹਿਰ ਔਰ ਬੜੀ ਲਹਿਰ ਕੀ ਭੇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ, ਐਸੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਛੋਟੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਐਸੇ ਬੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਉਪਾਧੀ 'ਚ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਔਰ ਜੀਵ ਕਾ ਸਰੂਪ ਸੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਈਸ਼ਵਰ ਕਾ ਔਰ ਜੀਵ ਕਾ ਸਰੂਪ ਸੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਉਪਾਧੀ ਸੇ ਭੇਦ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਤੇ ਅਵਸ਼ੇਦਵਾਦ ਮੇਂ ਮਾਇਆ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਚੇਤਨ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਵਿਦਿਆ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਚੇਤਨ ਜੀਵ ਕਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ? ਮਾਇਆ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਔਰ ਜੀਵ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ? ਅਵਿਦਿਆ। ਅਭਾਸਵਾਦ ਮੇਂ ਮਾਇਆ ਔਰ ਅਭਾਸ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਚੇਤਨ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਭਾਸ ਸਹਿਤ ਅਵਿਦਿਆ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਚੇਤਨ ਕੋ ਜੀਵ ਕਹੇ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਲੈ ਲਓ? ਉਹ ਅਵਿਦਿਆ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਾਧੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਅਵਿਦਿਆ। ਅਭਾਸਵਾਦ ਮੇਂ ਅਭਾਸ ਸਹਿਤ ਅਵਿਦਿਆ ਔਰ ਮਾਇਆ ਕਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਕਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਭਾਸਵਾਦ ਮੇਂ ਮਾਇਆ ਔਰ ਅਵਿਦਿਆ ਕਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਚੇਤਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੇਤਨ ਚੇਤਨ ਮੇਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਤੈਸੇ ਅਵਿਸ਼ੇਦਵਾਦ ਮੇਂ ਵੀ ਅਵਿਦਿਆ ਔਰ ਮਾਇਆ ਕਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਸੇ ਚੇਤਨ ਕਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਗਿਆਨ ਮੇਂ ਚੇਤਨ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜੀਵ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਚੇਤਨ ਕਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਜੀਵ। ਈਸ਼ਵਰ ਬਿੰਬ ਹੈ। ਬਿੰਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਈਸ਼ਵਰ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਪਕਸ਼ ਮੇਂ ਵੀ ਚੇਤਨ ਕਾ ਸਰੂਪ ਸੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਏਕ ਹੀ ਚੇਤਨ ਮੇਂ ਜੀਵਪਣਾ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰਪਣਾ ਆਰੋਪਿਤ ਹੈ। ਜੈ ਵਾਰਤਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕਰੇਂਗੇ, ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ? ਚੇਤਨ ਮੇਂ ਜੀਵਪਣਾ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰਪਣਾ ਆਰੋਪਿਤ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਜੀਵ ਦੀ ਵੀ। ਹੈ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ, ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਹੋਇਆ? ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੀਵ ਕੈਸੇ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਬਈ, ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਲਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਬੜੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਆਇਆ ਹੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜੀਵ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਸੇ ਜਗਤ ਕਾ ਕਰਤਾ ਸਰਵਗ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾ ਔਰ ਜੀਵ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਮਾਤਰ ਸੇ ਭੇਦ ਹੈ, ਔਰ ਸਰੂਪ ਸੇ ਭੇਦ ਹੈ, स्वरूप से भेद अपेद है, यह द्वितीय प्रश्न का उत्तर कहया। अब दो दो प्रश्न हो गए, उन्हें क्या सी ना संसार का कर्ता कौन है, उन्हें दसता भी संसार का कर्ता ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और व्यापक है, स्वतंत्र है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर कहया। आ मुक्ति का हेता हेतु कौन, जहाँ का उत्तर सुन लो। अब मुक्ति का हेतु कौन आ, ये साडा अपना प्रश्न आ गया, है तो साढ़े सारे अपने ही आ, पर जिहड़ा सानू ज़्यादा दुख दे रहा है ना वो यही प्रश्न है, वो सारे ज़्यादा सानू ज़्यादा दुख देने वाला प्रश्न वो यही है। क्या कह रहे हैं, मुक्ति का हेतु ज्ञान है। देख लो पहला उसने कह देता है मुक्ति का हेतु ज्ञान है, रीते ज्ञान है ना मुक्ति, ज्ञान तो बगैर मुक्ति का सोचना भी नहीं। क्यों भी जो रज्जू में सर्प का भुलेखा पै रहा है तो तुसी मंत्र पढ़ने लग जाओ रज्जू दे लागे सर्प दौड़ जाएगा, नहीं कमरे के अंधकार है तो तुसी जप करो अंधेरा भाग जाएगा, नहीं भगने वाला, जां यज्ञ करने लग जाओ जां पाठ करने लग जाओ भागवत खोल के बैठ जाओ गीता पाठ शुरू कर दो अंधेरा चले जाएगा, नहीं कैसे जाएगा, खाली दीपक जलाने से प्रकाश से। ऐसे ही अंधकार से जड़ा है ज्ञान अज्ञान रूपी जड़ा अंधकार है वो ज्ञान से नष्ट होगा। ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अज्ञान अंधेर विनाश तभी नाश होगा। मोक्ष का साधन ज्ञान है, मोक्ष का साधन ज्ञान है अथवा कर्म है अथवा उपासना है अथवा दो है, जहाँ का उत्तर कहे हैं। अब इसका उत्तर सुन लो, तीन प्रश्न करते हो ना एक प्रश्न दे विच, मोक्ष का साधन ज्ञान है अथवा जा कर्म है अथवा जा उपासना है जा दोनों है, केड़े केड़े है दसो। हेतु मोक्ष को ज्ञान एक नहीं कर्म नहीं ध्यान, आह हेतु मोक्ष को ज्ञान एक, वो कहता मोक्ष का हेतु एक ही है ज्ञान, एक मोक्ष का हेतु ज्ञान है, नहीं कर्म नहीं ध्यान, ना कर्म है ना ध्यान है। रज्जू सर्प तब ही नशे हुए रज्जू को ज्ञान, अंदा रज्जू का जड़ा सर्प है वो ताँ नष्ट होगा जो रज्जू का ज्ञान हो जाएगा, नहीं तो वो सर्प नष्ट होने वाला नहीं है। तो जदों अपने आप का ज्ञान हो जाएगा तो संसार का भी पता नहीं चलेगा। मुक्ति फिर हेतु मोक्ष को ज्ञान एक, अंदा एक जड़ा ज्ञान है, केवल ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, नहीं कर्म नहीं ध्यान, ना कर्म है ना ध्यान है ना उपासना है, ध्यान में उपासना ठीक है। रज्जू सर्प तब ही नशे हुए रज्जू को ज्ञान, रज्जू में जरा सर्प भ्रांति से प्रतीत हो रहा है वो रज्जू के ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी यही यही ज्ञान दूसरा शाब्दी ज्ञान। हाँ जी टीका, मोक्ष मुक्ति का हेतु कर्म और ध्यान कहिए उपासना नहीं, ध्यान कह मैंने उपासना, ध्यान दर्श कर रहे हैं उपासना, किंतु ज्ञान ही हेतु है ठीक है। काहे थे जो आत्मा में बंद सत होवे तो ताकि निवृत्ति रूप मोक्ष ज्ञान से होवे नहीं, किंतु कर्म अथवा उपासना से होवे सो बंद आत्मा में सत है नहीं, किंतु रज्जु सर्प की न्याय मिथ्या है, जा मिथ्या की निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञान से ही बने हैं, कर्म उपासना कर्म अथवा उपासना से नहीं। की कह रहे जे बंद सत होवे तो फिर तो कर्म करो तुसी तो कर्म से निवृत्त हो जाएगा, कैसे, जैसे सच्चा सर्प चला आ रहा दौड़ा इधर नू तो उन्होंने कहो रज्जू है रज्जू है रज्जू है, वह नष्ट होने वाला नहीं है, उन्होंने फिर किदा करोगे नष्ट, कर्म से डंडा लाओगे नष्ट हो जाएगा, और जरा रज्जू में सर्प प्रतीत हो रहा वो डंडे ना नष्ट होने वाला नहीं है, वो ज्ञान नष्ट होगा, वो रज्जू का ज्ञान करोगे तब नष्ट होगा, क्यों वो मिथ्या है, मिथ्या की निवृत्ति ज्ञान से होगी, सत की निवृत्ति कर्म से होगी। इतना ठीक से समझ लो, मिथ्या की निवृत्ति ज्ञान से होगी, सत की निवृत्ति कर्म से होगी। ते बंद सानू सत है प्रतीत हो रहा क्या मिथ्या, बंद तो मिथ्या है, मैं तो जीव हूं नहीं, शुद्ध ब्रह्म हूं ठीक है ना, जे शुद्ध ब्रह्म है तो जे प्रतीत हो रहा परपंच जन्म मरण ये क्यों प्रतीत हो रहा, मिथ्या शरीर के नाल संबंध हो करके, मिथ्या प्रतीत हो रहा ना, तो जो अपने आप का ज्ञान हो गया भी मेरा शरीर ना संबंध ही नहीं है तो जन्म वरण समाप्त हो गया। तो कैसे है फिर ये मिथ्या? तो मिथ्या की निवृत्ति ज्ञान से होगी, कर्म से नहीं, उपासना से नहीं। ठीक है, कर्म और उपासना मुक्ति के हेतु नहीं। आ देख लो हूँ ठीक से समझ लेना, ये तड़ा अपना ही प्रश्न लगेगा। जो कर्म का फल मोक्ष होवे, देख लो अंदर कर्म और उपासना मुक्ति के हेतु नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं हेतु? भाई देखो गलत शंका मन में नहीं धार लेना, कर्म और उपासना मुक्ति के हेतु नहीं है। उन्होंने कहने का तात्पर्य है मुक्ति चाहते तो ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है ना, ज्ञान हो जाएगा अपने आप का ज्ञान तो मुक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। अब वो कह रहे कर्म और उपासना से मुक्ति क्यों नहीं होगी ये दसेंगे। जो कर्म का फल मोक्ष होवे, जो कर्म से ही मोक्ष उत्पन्न होनी होवे, कर्म का फल मोक्ष होवे, सो मोक्ष अनित्य होवेगा। तो फिर तो मोक्ष अनित्य होवेगा, थोड़ी देर मोक्ष हो गया फिर बंधन पै गया कर्म दे नाल, क्यों? कर्म तो अनित्य है, कर्म किया समाप्त हो गया। ऐसे ही कर्म ने मुक्ति उत्पन्न करती, थोड़ी देर में कर्म जो समाप्त होया मुक्ति भी समाप्त होगी, फिर बंधन पड़ गया। ठीक है ना, जो कर्म का फल मोक्ष होवे तो मोक्ष अनित्य होवेगा। काहे ते? जह निजम है, जो कृषि आदि कर्म का फल अन्न आदि है सो अनित्य होवे हैं, और जाग आदि कर्म का फल स्वर्ग आदि भी अनित्य है। देखो क्या कह रहे हैं, कृषि मैंने खेती बाड़ी की जी तुम करते जे वो जो अन्न मैने अनाज उत्पन्न करते हो वो नित्य है क्या? नित्य है, कर्म किया खेती बीजती, ठीक है, कर्म किया और फिर वड ली, फिर अनाज किसे गया? समाप्त हो गया, पहला खेती बीजी फिर कट ली तो समाप्त होगी। ऐसे ही जब कर्म का फल मुक्ति हो गए तो पहला मुक्ति होगी फिर बंधन पड़ गया। जे यज्ञ का फल मान लो आप यज्ञ किया, यज्ञ आदि कर्म का फल स्वर्ग आदि भी अनित्य है, और यज्ञ किया स्वर्ग चल गए तो जिन्ना चिर यज्ञ का फल सानू उन्ना चिर रहन देंगे, जिन्ना चिर यज्ञ का जिहड़ा फल सी वह सानू भुगत नहीं लिया, आप जदों उहदा फल समाप्त होया छिणे पुने मृत लोक मशंती, और तेरे पुन छिण हो गए खत्म हो गए मृत लोक, पृथ्वी ते जाओ हुण जाके जन्म लवो। तो जैसे साढ़े बैल होण, आप बैल जोत से ना पहले बैल जोत से खेती करने के लिए, तो बाद च उन्होंने की करते सी बढ़िया बढ़िया चारा आटा भी धूड़ देना वो ते होर भी दाना भी पा देना, क्यों? कल फिर कम लेना इन्हें, है ना। और देवता भी ऐसे करते आंदा उपनिषद में सीधा क्या है, देवानाम पशु, ये जड़े मनुष्य देवत्या दे पशु हैं, क्यों? आंदा जैसे अपने पशु तो कम लैके उन्हें बढ़िया बढ़िया खिला देने हाँ तो सवेरे फिर कम लेना है, देवता भी ऐसे करते हैं, वो अपना कम लैके इन्हों बढ़िया बढ़िया स्वर्ग दिखा देंगे, चलो आ जाओ भी और फिर जाओ नीचे फिर कर्म करो जाके, फिर साढ़े को आओ, फिर साढ़े जग करो सानू तृप्त करो, वो सानू साढ़ा जग करे सानू तृप्त करे, बैल की करते साड़ी खेती करते सानू तृप्त करते, आप बढ़िया बढ़िया खवा देंगे। यही तो गल है ना, यही तो गल है, यही तो कह रहे जग आदि क्यों करने, फिर कर्म क्यों करना, फिर जेडे कर्म के नाल आप मुक्ति नहीं पैरा प्राप्त कर सकते तो वह कर्म ही क्यों करना भी, यही तो गल है ना। देवत्या का काम ही कोई नहीं है, और देवते तपस्या दे वादा बन सकते हैं, ज्ञान में वादा नहीं बन सकते, ज्ञान तो अपना स्वरूप है, उन्होंने कि की आगे रुकावट कर देगा, तप के रुकावट करे, तपस्या के रुकावट करे, यज्ञ के रुकावट करे। तुम ऐसे बैठे चिंतन कर रहे हो मैं ब्रह्म हूँ तो देवता आगे की करे, वो देवता का ही अपना ही स्वरूप है आत्मा, उन्होंने आत्मा नहीं है, सर्वत्र व्यापक है, जो मेरे तो बगैर है ही कोई नहीं, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ अद्वितीय ब्रह्म, मेरे तो बगैर कुछ है ही नहीं, तो वादा कौन डालेगा, कौन वादा डालेगा, देवता तो रहा ही कोई ना, कौन वादा डालेगा, कोई होएगा ता ना है, जो मेरे तो भिन्न है ही कोई नहीं, मैं ही सर्वत्र व्यापक हूँ एक हूँ, यही तो क्या है, निर्भव तभी होया जाएगा, निर्भव भव हो भज भगवान, निर्भय हो जाओ निर्भय, और अपने आप का चिंतन करो, सब कुछ ਇੱਥੇ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਪਨ ਸੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ ਪਾਪਨ ਸੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਹਾਂ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾ ਫਲ ਮੋਕਸ਼ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮੋਕਸ਼ ਅਨਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਹੇ ਤੇ ਜਹ ਨਿਜਮ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਕਰਮ ਕਾ ਫਲ ਅੰਨ ਆਦਿ ਹੈ ਸੋ ਅਨਿੱਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਯੱਗ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਾ ਫਲ ਸਵਰਗ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਅਨਿੱਤ ਹੈ। ਜੋ ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾ ਫਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤੋ ਅਨਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾ ਫਲ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾ ਫਲ ਜੋ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੋ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਅਨਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਹੇ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਚਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਇਆ ਵਾਚ ਉਹ ਮਾਨਸ, ਬਾਣੀ ਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮ। ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ? ਬਾਣੀ ਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਨ ਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਇਆ ਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਆਦਿ ਜੱਗ ਆਦਿ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਮ ਕਾ ਫਲ ਅਨਿੱਤ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਰੂਪ ਕਰਮ ਕਾ ਫਲ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਕੂ ਕਰਮ ਸੇ ਪਾਂਚ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਆਹ ਠੀਕ ਸੇ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਰਤਾ ਕੂ ਕਰਮ ਸੇ ਪਾਂਚ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਕੂਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਔਰ ਪਦਾਰਥ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੋੜ ਭੱਜ ਦੋਗੇ, ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਦਾਰਥ ਕਾ ਵਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੈਸੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੈਸੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਪੋਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆ ਬੜੀਆ ਗੁਣ ਡਾਲ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਸੇ ਹੋਗਾ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰੋਗੇ? ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਦੱਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਕਿਆ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਕਿਆ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਸਰਵੱਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾ ਪਦਾਰਥ ਕਾ ਵਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਕਾ ਵਿਕਾਰ ਜੈਸੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਐਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਇਹੀ ਪੰਜ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਮੋਕਸ਼ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਰੂਪ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਮਲ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਔਰ ਗੁਣ ਕੀ ਉਤਪੱਤੀ। ਮਲ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਮੈਨੇ ਗੰਦਾ ਹੈ ਧੋਤਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਣ ਉਤਪੰਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਧੋਵੋਗੇ, ਪੇਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਹ ਪਾਂਚ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਕਰਮ ਉਪਯੋਗ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਸੋ ਮਮੁਕਸ਼ੂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਮੁਕਸ਼ੂ ਗਿਆਨ ਕੇ ਸਾਧਨ ਸਰਵਣ ਆਦਿਕਨ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਰਮੇ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ, ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਹੈਂਜੀ। ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ? ਜੈਸੇ ਕੁਲਾਲ ਕੇ ਕਰਮ ਤੇ ਕੁਲਾਲ ਕੂ ਘੱਟ ਕੀ ਉਤਪੱਤੀ ਉਪਯੋਗ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੁਲਾਲ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਲਾਲ ਮਨੇ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ? ਘੱਟ। ਤੈਸੇ ਮਮੁਕਸ਼ੂ ਕਰਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਕੀ ਉਤਪੱਤੀ ਉਪਯੋਗ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਮੁਕਸ਼ੂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਤਮਾ ਕੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਤੇ ਜੋ ਅਨਰਥ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਔਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਔਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸੋ ਅਨਰਥ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਆਤਮਾ ਸੇ ਨਿੱਤ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਅਨਰਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਰੱਜੂ ਮੇਂ ਸਰਪ ਕੀ निवृत्ति नित सिद्ध है। जैसे रज्जू में सर्प क्या संबंध हो गया रज्जू दे नाल, सर्प दा वो तो पहला निवृत्त सी भुलेखा ही पिया सी, ऐसे आत्मा में जन्म मरण है नहीं, भुलेखा ही पिया है। आत्मा परमानंद रूप है, जानते परमानंद की प्राप्ति भी नित्य सिद्ध है। की प्राप्त करोगे वो तो नित्य सिद्ध है, परमानंद की प्राप्ति। इस रीति से स्वभाव सिद्ध मोक्ष की कर्म से उत्पत्ति बने नहीं। हुण तुहाडे हाथ च कंगन पिया, कड़ा पिया, किसी पुरुष के हाथ जां बीबी के हाथ च, ठीक है, वो काम च लगी है, उन्हें ऐसे उपर कर लिया, उपर आप आ गया ऐसे कमीज आ गया, वो अपने घर के कम लगी है, जां पुरुष लगा जां बीबी कोई, ये बाद में उन्हें ध्यान आया, हाथ मारिया, कड़ा किधर गया? तो किसी ने कहा लभदी फिर रही है इधर इधर, तो किसी ने कहा उपर तो नहीं कहते चढ़ा लिया, जो उपर हाथ मारिया तो हाँ मिल गया। की वो कर्म से उत्पन्न होया कड़ा, केड़ा कर्म किया सी उहदे नाल उत्पन्न होया कड़ा, जां किते पहले गवाच गया सी, जे को की कहूगी बीबी, मिल गया, कितों मिलिया? ज्ञान से ते होया किसी भुलेखा पै गया सी, उहदे उदों भी उहदे पास ही सी जदों खोज रही सी बीबी। बस यही भरम चकना है, मैं जन्म मरण वाला हूँ, बस ये जदों भरम चक्या गया तो मुक्ति है, इतना ही कम कर, कोई कर्म की लोड़ नहीं, कोई उपासना की लोड़ नहीं। जो वस्तु आगे सिद्ध नहीं होवे ताकि कर्म से उत्पत्ति होवे है, और सिद्ध वस्तु की उत्पत्ति होवे नहीं। क्या बीबी ने जो हाथ मारिया कड़ा उस समय नवा बनाया सी उसने, तो पहला सी, क्या उन्होंने शुद्ध किया सी कोई, वो तो पहले सी पास, ऐसे ही आत्मा भी पहले ही अपने अपना स्वरूप ही है, वो कितों आएगी तो कितों जाएगी, ठीक है ना। वेदांत श्रवण भी मोक्ष की उत्पत्ति के निमित्त ही किया, देखो वेदांत श्रवण भी मोक्ष की उत्पत्ति के निमित्त नहीं कहया, किंतु आत्मा नित मुक्त है। आंदा वेदांत श्रवण तुसी कर रहे जे ये कादे वास्ते कर रहे जे, वेदांत श्रवण कर रहे जे ये कादे वास्ते कर रहे जे, आत्मा दी उत्पन्न करने वास्ते है ना। वेदांत श्रवण भी मोक्ष की उत्पत्ति के निमित्त नहीं किया,